नमस्कार भारत, 1 मई सोमवार, मैं हूं निखिल रंजन। असम के नगांव में 2 युवकों की भीड़ की पिटाई से मौत, गाय चोरी करने का आरोप। भारत में आज से लागू होगा रियलिटी स्टेट एक्ट। मई दिवस पर सुनिएगा घरों में काम करने वाली महिलाओं की मुश्किलों का हाल।
चोरी का इंजाम लगा दिया, एक घर में बोला माला चुराया, अंगूठी चुराया, बहुत बुरा फूलिया, छोटे छोटे बच्चे को लेके आई हूँ इस पर।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बेहद चालाक हैं उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन।
He was a young man of 26 or 27 when he took over from his father when his father died.
वसतुल्लाह खान की डायरी और साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को बेहद चालाक व्यक्ति कहा है। उन्होंने साथ ही उत्तर कोरिया को चेतावनी भी दी है कि उत्तर कोरिया के किसी संघर्ष में शामिल होने से लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। CBS नेटवर्क को दिए अपने इंटरव्यू में ट्रंप ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की सूरत में उसके खिलाफ किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया है। नेपाल के पर्यटन विभाग का कहना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे स्विट्जरलैंड के नामी पर्वतारोही उली स्टैक की मौत हो गई है। स्विस मशीन के नाम से जाने जाने वाले स्टैक बिना ऑक्सीजन के एक नए रास्ते से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। रविवार को जब उनकी मौत हुई तो वे अकेले चढ़ाई कर रहे थे। माना जा रहा है कि बहुत अधिक ठंड के कारण उनके पार्टनर की तबीयत बिगड़ गई थी और वो उनके साथ नहीं थे। 2013 में उली स्टैक के साथ अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर चढ़ाई करने वाले ब्रितानी पर्वतारोही सर क्रिस बेनिंगटन ने बीबीसी को बताया।
The route he made on the southwest of Annapurna in 2013.
2013 में अन्नपूर्णा पर चढ़ने के लिए जो रास्ता हमने बनाया वो वही रास्ता था जो मैंने इस पर चढ़ाई करने के लिए 1970 में चुना था, लेकिन हमारा दल 8 लोगों का था और हमने कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, रस्सियों की मदद ली और फिर चढ़ाई की। स्टैक ने भी उसी रास्ते पर चढ़ाई की, लेकिन उन्होंने ये कारनामा बस 28 घंटों में ही कर दिया, वो भी अकेले। ये बेहद आश्चर्यजनक था। ये थे सर क्रिस बेनिंगटन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया से मिल रही खबरों के अनुसार तबका शहर पर कथित इस्लामिक स्टेट के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश में अमरीका समर्थित सेना को कुछ बढ़त हासिल हुई है। कुर्द लड़ाकों और अरब मिलिशिया के गठबंधन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने 6 और जिलों पर कब्जा कर लिया है। तबका इस्लामिक स्टेट का गढ़ माने जाने वाले रक्का से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इलाके में लड़ाई से बचकर भाग रहे लोगों को सीरियन ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेज नाव के जरिए असद झील के पार पहुँचा रही है। तबका से भाग रहे इस्माइल मोहम्मद कहते हैं, वहाँ पर मानवीय हालात बेहद बुरे हैं, लोग भूखे हैं और थके हुए हैं, हर व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान है या टूट चुका है। जब हम नाव से जा रहे थे पानी के ऊपर से, मैं यकीन ही नहीं कर सका, हम बहुत खुश हैं। तबका से भाग रहे इस्माइल मोहम्मद के शब्द। सीरिया और इराक में कथित इस्लामिक स्टेट पर हमले कर रही अमरीकी नेतृत्व में गठबंधन सेना ने अब तक गलती से कम 352 आम नागरिकों को मारा है। अमरीकी नेतृत्व में गठबंधन सेना ने साल 2014 में 14 से IS पर हमले करना शुरू किया था। बीते महीने जारी की गई गठबंधन सेना की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। माना जा रहा है कि अन्य रिपोर्टों की तुलना में सेना ने आंकड़े काफ़ी कम करके दिखाए हैं। सीरिया मामलों पर निगरानी रखने वाले स्वतंत्र समूह एयरवेज का कहना है कि अब तक गठबंधन सेना के हवाई हमलों में 3,000 से अधिक आम नागरिक मारे जा चुके हैं। नेपाल में मौजूदा सरकार की 2 बड़ी पार्टियों के महाभियोग प्रस्ताव लाने के बाद देश की पहली महिला चीफ जस्टिस को निलंबित कर दिया गया है। सुशीला कुर्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 249 मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए, जो जांच शुरू करने के लिए जरूरी 1/4 मंत्रियों के आंकड़ों से अधिक हैं। माना जा रहा है कि पुलिस प्रमुख के चुनाव के मामले में उन्होंने सरकार के फैसले को पलट दिया था, जो मौजूदा गठबंधन को पसंद नहीं आया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत। बीबीसी रेडियो पर सोमवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। आज मई दिवस है, यानी दुनिया भर के मजदूरों के हक में आवाज उठाने का दिन। इस मौके पर हम बात करेंगे घरों में, भारत के घरों में काम करने वाली महिलाओं और उनके हालात की। लेकिन पहले खबर असम से, जहां भीड़ की पिटाई में दो युवकों की मौत हो गई है। इन युवकों पर गाय चुराने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों युवक कथित रूप से गाय चोरी कर ले जा रहे थे। इसी दौरान लोगों ने उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस उन्हें लोगों से छुड़ाकर अस्पताल ले गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इलाके में इस घटना के बाद तनाव है। कुछ ही देर पहले गुवाहाटी में दिलीप शर्मा से इस बारे में मैंने जानकारी मांगी।
देखिए, ये जो गुवाहाटी शहर है, यहाँ से 130 किलोमीटर दूरी पर नौगांव जिला है, वहाँ के कासिमारी इलाके में ये रविवार की घटना है, जहाँ दो युवकों पर कथित तौर पर गाय चोरी करने का आरोप लगाया गया और ग्रामीणों की भीड़ ने उन दोनों युवकों को बहुत बुरी तरह पीटा और उनकी मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि भाई, जिस इलाके में घटना हुई है, ये कासिमारी का एक चारागाह था जहाँ गाय चरने के लिए लोग छोड़ते थे गांव वाले, और वहाँ से काफी गाय चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। पुलिस को इसकी शिकायत भी मिल रही थी। ऐसे आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये दोनों वहाँ से गाय लेकर निकल रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उनको देखा और देखते देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ ने लाठियों से, डंडों से उनको इतनी बुरी तरह पीटा। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो मौके पर पहुंच गई और उनको इलाज के लिए फौरन अस्पताल भी ले गई, लेकिन उनको इतनी ज्यादा चोट आई है गंभीर रूप से, दोनों ही युवकों ने वहां दम तोड़ दिया। और ये असम में देखिए, ये इस किस्म की ये पहली घटना है, क्योंकि देश में पिछले 2 साल से गाय पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि उसका भी कुछ असर हो लोगों में। हालांकि पुलिस ने इस बात से बिल्कुल इनकार किया कि किसी गोरक्षक संगठन के किसी व्यक्ति का इसमें कोई हाथ होगा या किसी का नाम आया है। और मृतकों के परिवार के कहने पर एक मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
गुवाहाटी से स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा बता रहे थे कि नौगांव में दो युवकों की भीड़ की पिटाई में मौत हो गई है और इन युवकों पर गाय की चोरी करने का आरोप लगा है। अब अगली खबर। भारत में मकान बनाने वाली कंपनियों और खरीदारों के बीच विवाद की खबरें अक्सर आती हैं। सरकार ने इन्हीं मुश्किलों का हल निकालने के लिए रियल इस्टेट एक्ट तैयार किया है, जो 1 मई यानी आज से लागू हो रहा है। इसमें मकान खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा और रियल एस्टेट सौदों में पारदर्शिता का वादा किया गया है। और सरकार का कहना है कि मकान के खरीदारों की हैसियत अब राजा जैसी होगी। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने आर्थिक मामलों के जानकार एमके वेणु से पूछा कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है।
इसमें कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है, ये तो पहले ही होना चाहिए। जब रियल एस्टेट मार्केट में जब बूम पीरियड था 2003 से 2010 तक, तब सारे शहरों में जो खूब सारे जो फ्लैट्स बने, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, ये तभी होना चाहिए, तब हुआ नहीं। 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई, रिसेशन हुआ, तो रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। लोगों से पैसे लिए गए और उनको घर डिलीवर नहीं कर पाए, और रियल एस्टेट कंपनियां थी, उन्होंने बैंकों से पैसा लिया था और लोगों से भी पैसे लिए थे, वायदा किया घर देंगे मगर टाइम पे नहीं दिया, आपसे लिया पैसा उसको किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया। इसके दौरान जब मिडिल क्लास इंडिया, जिन्होंने अपने जो हार्ड अर्न सेविंग्स को जो लगाया था घर खरीदने में, उन्होंने जब सड़क पे आकर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद ये मामला शुरू हुआ। यूपीए सरकार में ये ड्राफ्ट बिल बना और ये अब जाके ये एक्ट बना है। बिल ये इंश्योर करेगा कि भाई कंपनी ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने बनाए घर। इस बिल में ये कहा गया कि जितना पैसा आपने दिया वो पूरा एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा और वो बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट के लिए लगा जाएगा। फिर आपको रियल एस्टेट रेगुलेटर के साथ इनको रजिस्टर करना पड़ेगा और रियल एस्टेट रेगुलेटर मॉनिटर करेगा कि घर टाइम पे मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें तो बहुत ही मतलब बेसिक चीजें थी जो पहले होनी चाहिए थी।
महानगरों में न जाने कितने फ्लैट बनकर तैयार हैं जो खरीदारों के लिए तरस रहे हैं एक तरह से।
बिल्कुल।
आपको लगता है कि रियल एस्टेट एक्ट आने के बाद प्रॉपर्टी के दाम कुछ पहले के मुकाबले कम होंगे?
देखिए, रेगुलेटर प्रॉपर्टी के दाम तो कम नहीं कर पाएंगे। ये जरूर है कि जो फ्लैट ज्यादा बन गए, डिमांड से ज्यादा, तो अपने आप गिरने चाहिए। और दूसरा, नोटबंदी के बाद आपने देखा होगा रियल एस्टेट के दाम गिरे हैं, पूरे हिंदुस्तान में गिरे हैं, मगर अभी उसका असर दिख नहीं रहा क्योंकि कोई घर बेच नहीं रहा, लोग अभी उसको होल्ड करके बैठे हुए। जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं जिन्होंने फ्लैट बना के रखी हुई है, वो भी उसको अभी नहीं बेच रहे, उसको होल्ड कर रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये रियल एस्टेट प्राइस गिरेगा जरूर, और इस पे भी निगरानी रियल एस्टेट रेगुलेटर की रहेगी। और जो नए जो सिरे से जो फ्लैट्स बनेंगे, जो इस सरकार का वायदा है कि 10-20 मिलियन घर बनाए जाएंगे, 2 करोड़ घर, वो किस तरह बनते हैं और वो किस तरह डिलीवर होता है, उस पर रियल एस्टेट रेगुलेटर का बड़ा रोल रहेगा।
आर्थिक मामलों के जानकार एमके वेणु से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी संदीप सोनी। और अब मई दिवस की बात। घरों में काम करने वाली महिलाओं ने मई दिवस पर समाज और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। जयपुर में 15,000 से अधिक महिलाएं घरों में साफ सफाई और खाना पकाने का काम कर गुजर बसर करती हैं। इनमें से ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत की रहने वाली हैं। उनका दावा है कि श्रम कानूनों का उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, काम के दौरान उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
जिंदगी की मुश्किलों ने उन्हें नारे बुलंद करना सिखा दिया। कहीं वो बावर्ची है, कहीं बाई। वे अपने इस काम की खातिर घर घर घूमती है, दर दर भटकती है। इन औरतों को दुख है कि उन्हें अपनी मेहनत का मोल नहीं मिल पाता। शिकायत करो तो कभी ज्यादती की जाती है, कभी चोरी का इल्जाम चस्पा कर दिया जाता है। ऐसी आप बीती सुनाते हुए अर्चना का दामन आंसुओं से भीग गया।
बहुत मुश्किल आती है मेरे को तो, पता नहीं दीदी लोग नहीं होता तो मेरा क्या हालत कर देती है लोग। चोरी का इंजाम लगा दिया, एक घर में बोला माला चुराया, अंगूठी चुराया, बहुत बुरा फूला, छोटे छोटे बच्चे को लेके आई हूँ इस पर, बहुत ये झूठा इंजाम लगा दिया। हाथ हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते थे, काम करना मुश्किल कर दिया था मेरा। शक करते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं, चैन से काम भी नहीं करते, रास्ते में रोक के परेशान किया मेरे को, जा जा काम कर ले नहीं तो तेरे को इंजाम में फंसा दूंगी, चोरी के इंजाम में।
राजस्थान में पिछले सप्ताह ही मंत्री विधायकों ने अपने वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की है, लेकिन छोटी छोटी दिहाड़ी पर पेट पालती इन महिलाओं का कहना है कि उनके लिए तो ताने हैं, उलाहने हैं। आसाम की वैष्णवी 25 साल से जयपुर में घर घर जाकर काम करती है।
देखो ताना कसा ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। जो हम लोग काम पे जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, हमारे काम का कोई वैल्यू ही नहीं है। मालिक जिस हिसाब से बोलते हैं हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है, नहीं तो काम से निकल जा। वो लोग की मर्जी से वो लोग वेतन देते हैं, वो लोग की मर्जी से काम कराते हैं। हम लोग शिकायत करें तो किससे करें? हमारे लिए जैसे लेबर कोड है, पुलिस थाना है, कोई हमारे साथ अनहोनी हो जाता है पुलिस थाना में जाते हैं, तुम लोग बंगाली हो, भाई हो, तुम्हारे साथ क्या होगा? ऐसे ही होगा, तुम्हारे कोई ऐसे कार्रवाई नहीं होगा। लेबर कोड में जाके कुछ बार शिकायत करे हम देख लेंगे तो कि तो रह जाता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होते। हमारे ऐसे एक वेतन रखा है सरकार ने, लेकिन हमारे जो मेहनत हो रहा है, मेहनत जो करा रहे हैं ये लोग, इस हिसाब से जो देना है वो नहीं देते।
जमाने के लिए वो महज बाई है, मगर बच्चों के लिए तो माँ है। बच्चे जब अपने हिस्से की खुशियों के लिए मचलते हैं तो माँ मायूस हो जाती है। अंजलि इस बेबसी को यूं बयान करती है।
क्या करे, किसके पास जाए? आज दुकान में उधार खाओगी, कल दुकान वाला घर आ जाएंगे। अरे इतना दिन हो गए पैसा नहीं दे रही है। चीजें जो बच्चा मांगते है तो बाजार भी जाते है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है वो इतना अच्छा चीज दिला नहीं सकते। जो हमारे लायक की है, जो हम इतना दिला सकते है वही लेके आते है। आज हमारी बच्चा कहे बोले मम्मी अच्छा स्कूल में ढाल, ऑटो करा दे, तो हम ढाल ही नहीं सकते।
इन महिलाओं का कहना है कि बीमारी में भी उन पर रहम नहीं किया जाता। बंगाल से आकर घरों में काम करती ज्योत्सना कहती है,
क्या वो लोग मानते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करते जो हम बीमार पड़ सकते, कि तुम तो ऐसे ही करते हो, हर महीने नाटक करते हो। मतलब हमारी बीमारी का कोई वो नहीं है, मतलब बीमार हो चाहे कू हो, उनका काम जरूरी है। मतलब शरीर किसी दिन ऐसा होता है जो चलती नहीं, तो भी जाके मजबूरी में काम करना पड़ता है हम लोगों। और जैसे 4 से ज्यादा 5वां छुट्टी हो गया तो पैसे काट लेते हैं।
मुश्किलों की धूप ने उन्हें सख्त बना दिया है। मुद्दत हुई जब उन कंठों ने कोई उत्सव राग गाया हो। हर सांस ढले उन्हें लगता है कि कल सूरज उनके हिस्से की रोशनी लेकर आएगा, पर क्या सियासत इसकी इजाजत देगी? नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षणों को लेकर उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच काफी तनाव है। इस बीच उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चालाक व्यक्ति हैं। अमरीकी टीवी चैनल CBS से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने और भी बहुत कुछ कहा है और अब उनकी बातों के मतलब निकाले जा रहे हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए मानसी दास से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को मुश्किल समय से अच्छी तरह निपटने वाला चालाक व्यक्ति कहा है। अमरीकी टीवी चैनल CBS से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
He was a young man of 26 or 27 when he took over from his father when his father died.
वो 26 या 27 साल के युवा थे जब उनके पिता की मौत हुई। जाहिर है कि वो बहुत सख्त लोगों का सामना कर रहे हैं, खास तौर से जनरलों और दूसरे लोगों का। बहुत कम उम्र में उन्हें सत्ता मिली। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने उनसे सत्ता दूर करने की कोशिश की। अब वो चाहे उनके फूफा हों या कोई और, उन्होंने सत्ता को अपने पास बनाए रखा। जाहिर है कि वो बहुत चालाक व्यक्ति हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंटरव्यू ऐसे वक्त दिया है जब दो हफ्तों के भीतर दूसरी बार उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण नाकाम हो गया है। शनिवार को मिसाइल छोड़े जाने के कुछ ही देर बाद उसमें धमाका हो गया। ट्रंप का कहना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के सहयोगी हैं और वो किम जोंग उन पर परमाणु और सैन्य गतिविधियों को कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
The president of China, President Xi, I believe has been putting pressure on him also, but so far.
मैं मानता हूं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक शायद इसमें कोई नतीजे नहीं आए हैं, या फिर आए हों। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों को छोटा बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिन्हें लंबी दूरी की मिसाइलों पर फिट किया जा सकेगा। इन मिसाइलों की रेंज अमरीका तक पहुँचने की बात कही जाती है। उत्तर कोरिया पर दबाव डालने के लिए अमरीका ने अपने युद्धपोत कोरियाई क्षेत्र में भेज दिए हैं और इसी हफ्ते दक्षिण कोरिया में विवादित एंटी मिसाइल सिस्टम लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। इंटरव्यू के दौरान उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा,
I would not be happy. If he does a nuclear test, I will not be happy. And I can tell you also, I don't believe that the president of
China. अमरीका बहुत खुश नहीं होगा। अगर वो परमाणु परीक्षण करते हैं तो अमरीका खुश नहीं होगा। और मैं आपको बता सकता हूं कि चीन के राष्ट्रपति, जो कि एक बेहद सम्मानित व्यक्ति हैं, वो भी इससे खुश नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। उत्तर कोरिया हाल के महीनों में लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और साथ ही छठा परमाणु परीक्षण करने की भी चेतावनी दे रहा है।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। और आइए अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। मानसी दास आ चुकी हैं स्टूडियो में। जी मानसी, क्या है आज?
आज अखबारों की बात करते हैं तो पहले लेते हैं जनसत्ता में जो इरफान का कार्टून छपा है वो। कल योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि EVM का मतलब है एवरी वोट फॉर मोदी। आज उसी पर है कार्टून। योगी आदित्यनाथ के सामने केजरीवाल, अखिलेश और मायावती खड़ी हैं और वो कह रही हैं, वही तो हम भी कह रहे हैं। अब अखबार की एक और खबर मैं आपको सुना दूं। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने 700 नई नवेली दुल्हनों को कपड़े धोने की मोगरी यानी बैट, कपड़े धोने की बैट भेंट की है ताकि वो नशा करने वाले अपने पतियों को इससे पीट सके। अखबार के अनुसार मोगरियों पर शराबियों के सुटारा यानी सुधारने हेतु भेंट लिखा था। भार्गव कहते हैं कि एक बार एक महिला ने उनसे पूछा था कि क्या वो अपने पति को बैट से पीट कर इस परेशानी से छूट सकती हैं। भार्गव को ये विचार पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने 10,000 मोगरी बनाने का ऑर्डर दे दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार दिल्ली पुलिस ने प्रदेश के दक्षिणी इलाके में मौजूद एक आश्रय गृह के खिलाफ लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने की शिकायत दर्ज की है। अखबार का कहना है कि इस मामले में आश्रय गृह में रहने वाली 10 लड़कियों ने उनका यौन उत्पीड़न किए जाने, कम उम्र में बड़ा बनाने के लिए ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन देने और उनके साथ मारपीट करने की शिकायत की है।
बहुत शुक्रिया मानसी अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब अगली खबर। बस्तर के सुकमा का इलाका सुरक्षा बलों के जवानों के लिए देश में सबसे ज्यादा खतरनाक पोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। पिछले एक दशक में माओवादी छापामारों और जवानों के संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान अर्धसैनिक बलों के जवानों को ही उठाना पड़ा। 24 अप्रैल को सुकमा के चिंता गुफा में हुए बड़े नक्सली हमले में 25 जवान मारे गए थे। ये इलाका बाकी की दुनिया से कटा हुआ है और यहाँ आना जाना बड़ा जोखिम भरा काम है। सुकमा के चिंता गुफा से BBC संवाददाता सलमान रावी ने ये डायरी भेजी है।
रास्ता ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारूदी सुरंगों से पटी हुई सुकमा जिले के दोरनापाल से लेकर जगरगुंडा तक की सड़क पर हिचकोले खाती हुई मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो तो दूर दूर तक ना तो कोई दूसरी गाड़ी और ना ही कोई इंसान का साया ही नजर आया। गर्म हवा के थपेड़ों के बीच चिंता गुफा तक का सफर बहुत ही जोखिम भरा है। कुछ ही दूरी पर सुरक्षा बलों के कैंपों में रजिस्टर लिए जवान आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर और उसमें सफर कर रहे लोगों के बारे में जानकारी दर्ज करते हैं।
कहाँ से आ रहे हैं?
दिल्ली से आया हूँ। ये
दिल्ली से? हाँ। ठीक है सर। वो हम छोड़ रहे हैं, पूछ के जाओ ना ऐसे जबरदस्ती कैंप में। ठीक है सर, आगे जाओ।
ठीक है।
दुर्गाबाद
कहाँ हुआ, कहाँ है ये घटना?
चार पाँच किलोमीटर आगे।
चार किलोमीटर सेफ है जाना?
हाँ ठीक है। तो हम कुछ नहीं कह सकते, जगह तो ऐसे तो न्यूज़ वाले आप भी जी है तो इधर सेफ नहीं रहता। ये अभी मीडिया वाले आ जा रहे हैं, इनके लिए ठीक ठाक है।
सीओ साहब कौन है
इधर? सीओ साहब नहीं, कंपनी कमांडर।
कंपनी कमांडर, तो बात कर पाएंगे उनसे लौट के?
वापसी में हो
सकता है। ये सड़क कच्ची है। घटना के बाद से दोरनापाल से लेकर जगरगुंडा तक के रास्ते में मौजूद सुरक्षा बलों के कैंपों में मायूसी भी है और गुस्सा भी। तलाशी के दौरान सुरक्षा बल के अधिकारी बात भी करने से परहेज कर रहे हैं।
ये तो जबरदस्ती अंदर घुस के कैंप के अंदर। सर जी, सर सर प्लीज आप बाहर हो जाओ। सारी ऐसे अंदर जबरदस्ती घुस रहे सर, आप गेट में आ जाओ सर।
फिर भी मोर्चे पर तैनात संतरी और बाहर पहरा दे रहे जवानों और अधिकारियों से बात करने का मौका जरूर मिला।
हम लोग कहाँ कहाँ बात कर रहे हैं?
कुछ कैंप के बाहर मौजूद जवानों ने दबी जुबान से ही सही सुकमा के सुदूर बीहड़ में तैनाती के अपने अनुभव भी साझा करने शुरू कर दिए।
लोग भी वैसा ही हैं जिनको पैसा देके खरीद लिए, बस ऐसी समझती है। मतलब उनका कोई इससे लेना देना नहीं। अभी मानवाधिकार वाले ऐसे एक सिविलियन जाएगा कैंडल लाइट मार्च करेंगे, और अभी 26 गए तो कोई
शुरू हो गया ना रोज का जो हमेशा टाइप कर रहता है मारपीट और दुनिया भर का वाला दिखाओ निशान का है भग गए।
वही चीज़ है, वही बात है ना, फोर्स के साथ बहुत मजबूरी होती है, ऐसे बाहर से बोलना कुछ और होता है।
सुकमा स्थित वरिष्ठ पत्रकार लीलाधर राठी कहते हैं कि बस्तर के इलाके में जवानों को जिस लड़ाई में झोंका गया है, दरअसल ये उनकी लड़ाई है ही नहीं।
आए दिन जिस तरह की घटना घट रही है, इसको लेकर सरकार को भी फिर से एक बार मैंने कहा कि फोर्स को लेकर, खासकर सीआरपीएफ को लेकर, जो इनकी पूरे सुकमा में लगभग 85% जो तैनाती है वो सीआरपीएफ की है, और खासकर दूसरे जो डीआरजी अन्य जो पुलिस बल है वो तैनात हैं। लेकिन अब अगर पड़ोसी राज्य की बात करें, खासतौर पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर ग्राउंड से लोकल पुलिस है तो वहाँ कैजुअल्टी कम है। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो भी यहाँ जंगल है, झाड़ी है और जो नदी नाले हैं, उसकी जानकारी से थोड़ा सा मेरा लगता है ये जो बाहर की जो फोर्सेस है वाकिफ नहीं है। तो या तो उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो जंगल से वो वाकिफ हों।
सुकमा ही बस्तर का वो इलाका है जहाँ सुरक्षा बलों ने इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है। वो किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वही जानते हैं, क्योंकि वो इस इलाके को देश में सबसे ज़्यादा खतरनाक मानते हैं। सलमान रावी, BBC, सुकमा।
और आइए अब सुनते हैं वसतुल्लाह खां की पाकिस्तान डायरी।
ज़रा सोचिए वो दुनिया कितनी बेरंग, फीकी और बोरिंग होती होगी जिसमें ना मीडिया, ना नेता, ना अपोजिशन, ना लोकतंत्र का टंटा। खबर सिर्फ बादशाह का फरमान हुआ करता था और मीडिया वो ढंडोरची होता था जो सुनो 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 शाहे आलम की जय हो, इस बरस लगान आधा कर दिया गया है, सुनो 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 कल महाराज की सवारी आपकी बस्ती से गुजरेगी, इत्यादि इत्यादि। ये जो बादशाह और राजा महाराजा 25-50 वर्ष हुकूमत कर जाते थे और सिर्फ यमराज ही उनसे त्याग पत्र ले सकता था, क्या आज ऐसा मुमकिन है? अब आप मुझे ब्रिटेन की रानी का उदाहरण मत दे दीजिएगा कि उन्हें तो सिंहासन पे बैठे बैठे आधी सदी से ज़्यादा वक्त हो गया। रानी जी इसलिए जमी हुई हैं कि वो मीडिया को अपने पास फटकने नहीं देती। आपका क्या ख्याल है, अगर अकबर के ज़माने में प्राइवेट टीवी चैनल्स होते तो वो 50 वर्ष छोड़ 50 महीने भी निकाल सकता था? ब्रेकिंग न्यूज़, दाई अंगा ने जहांगीर को महल में दाखिल होने से रोक दिया। अभी अभी सूचना मिली है कि राजा मान सिंह के सेक्रेटरी के घर से शाही खजाने के 4 अंडे बराबर हीरे पकड़े गए। महाबली अकबर ने रिपोर्ट तलब कर ली है और एक जांच आयोग बिठाने का हुक्म दे दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, राजा बीरबल ने महाबली की पार्टी छोड़ के बैरम खान की जनार्दन पार्टी ज्वाइन कर ली। अकबर ने चुनाव आयोग को मुल्ला दो प्याजा के जरिए पिटीशन भिजवाई है जिसमें कहा गया है कि बीरबल की दरबारी सीट कैंसिल करके उपनिर्वाचन चुनाव का हुक्म दिया जाए। ब्रेकिंग न्यूज़, महाबली अकबर ने शहजादा सलीम स्कैंडल का फैसला सुनाते हुए अनारकली को दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया है। आइए इस हुक्म के बारे में जनता के विचार जानते हैं। जी, आप महाबली के इस हुक्म को कैसे देखते हैं? ये सरासर मानव अधिकारों का उल्लंघन है। जी, आप क्या कहते हैं? भैया, अनारकली गरीब की बेटी है इसलिए उसकी कोई सुनवाई नहीं है। न्याय तो ये होता कि शहजादा सलीम को भी अनारकली के साथ क्या कहते हैं कि चुनवाए जाने का हुक्म दिया जाता। हम तो ये कहेंगे कि दोषी ना अनारकली है ना शहजादा सलीम, जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा इसी तरह के फैसले होते रहेंगे। चेहरे नहीं समाज को बदलो, इनकलाब जिंदाबाद। आइए सीधे चित्तौड़ चलते हैं जहां के महाराजा अनारकली के मुद्दे को लेके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इन दिनों पाकिस्तान में यही हाल है। पनामा लीक्स के अदालती फैसले के बाद सियासी पार्टियों और मीडिया के पास खबरों का काल है, इसलिए अब इस पे गुजारा है कि साजन जिंदाल पाकिस्तान क्यों आया, क्या उसके पास वीज़ा था, इमरान खान को शहबाज शरीफ की तरफ से 10 अरब रुपए की पेशकश किसने की, डॉन लीक्स की जांच रिपोर्ट की खबर किसने लीक की, जमात इस्लामी का कराची के मसाइल पर गवर्नर हाउस के सामने धरना। आज पाकिस्तान के शहरों में 8 से 12 घंटे और गांवों में 16 से 20 घंटे की लोड शेडिंग रही, मगर ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं। इस्लामाबाद में एक चैनल के म्यूज़िकल शो में स्टेज गिर जाने से 150 के लगभग लोग जख्मी हो गए, मगर ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान पे अमरीकी ड्रोन हमला, मगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं। आइए आपको सीधे मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं जहाँ वो कोई अहम ऐलान करने वाले हैं।
तो ये थे वसतुल्लाह खां अपनी साप्ताहिक पाकिस्तान डायरी के साथ, और आइए अब एक और साप्ताहिक कार्यक्रम सुनते हैं खेल खिलाड़ी आदेश कुमार गुप्त से।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस अंक में चर्चा हॉकी और आईपीएल की, और समीक्षा, क्या आईसीसी से मिलने वाले पैसे में अपनी घटती हिस्सेदारी से नाराज बीसीसीआई नहीं भेजेगी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया। शुरुआत हॉकी से। इन दिनों मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में कल भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा दिया। भारत के लिए पहला गोल खेल के 23वें मिनट में मनदीप सिंह ने किया। इसके बाद हरमनप्रीत सिंह ने खेल के 27वें और 47वें मिनट में गोल किए। ये दोनों गोल उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर किए। इससे पहले अपने पहले मैच में भारत ग्रेट ब्रिटेन से 2-2 से बराबरी पर रहा था। अब भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। एक अन्य मुकाबले में कल ग्रेट ब्रिटेन ने जापान को 5-3 से मात दी। और अब समीक्षा बीसीसीआई और आईसीसी के बीच बिगड़ते रिश्तों पर। आजकल विश्व क्रिकेट में सबसे अमीर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आईसीसी के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। दरअसल बीसीसीआई आईसीसी को होने वाली आमदनी में जो हिस्सा मांग रहा है वो उसे मिल नहीं रहा है, और जो हिस्सा आईसीसी देना चाहती है वो बीसीसीआई को मंजूर नहीं। आईसीसी बीसीसीआई को $39 करोड़ देना चाहता है, वो इसे कम मान रहा है। तो क्या अब ये माना जाए कि अपनी हिस्सेदारी को लेकर बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी मौजूदगी को लेकर आईसीसी पर दबाव बना रही है? क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
स्पेशल जनरल मीटिंग है या बुलाई जाएगी जहां पर यह किया जाएगा कि एक चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना है नहीं, और बहुत से लोगों का मानना है कि बीसीसीआई को अपनी जगह बता दी है आईसीसी ने। लेकिन जहां तक जो मैंने महसूस किया है बातचीत करते हुए कि बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स है वो भी बिल्कुल इस इरादे पे अटल है कि वो पीछे नहीं हटेंगे चाहे चैंपियंस ट्रॉफी को मिस करना पड़े।
इससे पहले बीसीसीआई को तब बड़ा धक्का लगा जब दुबई में आईसीसी की बैठक में आमदनी के मॉडल पर दूसरे तमाम देशों ने बीसीसीआई के खिलाफ वोट दिया, और जब बीसीसीआई ने इसके विरोध में वोटिंग कराई तो वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। बीसीसीआई 8-2 से हारा और उसे सिर्फ श्रीलंका का सहारा मिला। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को बेहद चालाक व्यक्ति कहा है। नेपाल के पर्यटन विभाग का कहना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे स्विट्जरलैंड के नामी पर्वतारोही उली स्टैक की मौत हो गई है। सीरिया के तबका शहर पर कथित इस्लामिक स्टेट के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश में अमरीकी समर्थित सेना को थोड़ी सी बढ़त हासिल हुई है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया मानसी दास ने और आज स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने। आपसे शाम को फिर मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।